सत्र नंबर ग्रेजुएशन में 13-5 87 का प्रातः क्लास पेज नंबर 14 का बच्चों को ये निश्चय है कि हम आत्मा हैं। बाबा भगवान हमको पढ़ा रहा है, बच्चों को खुशी होनी चाहिए क्योंकि कन्मुख आने से आत्मा समझती है कि बाबा आया हुआ है। नहीं तो बाबा आया हुआ नहीं समझा जा सकता, कब समझा जाए? जब कि कन्मुख आत्मा आए उसके कन्मुख बाबा के, इसलिए आए सब की सदगति करने के लिए। सर्व की सदगति दाता जीवन मुक्ति दाता वही है। बच्चे जानते हैं माया घड़ी घड़ी बुलाई देती है, परंतु ये तो समझते हैं ना, हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं, निराकार बाबा इस रथ पर सवार है। जैसे मुसलमान मोहम्मद का पटका घोड़े पर रखते हैं, कहेंगे इस घोड़े पर मोहम्मद की सवारी थी, तो निशानी रख देते हैं कहे की पटके। यहाँ तो है निराकार, तो पटके की निशानी रखते हैं, पटका माना कपड़ा फूल दुपट्टा वगैरह, वो किसकी यादगार हुई? वो तो शरीरधारी आत्मा प्रवेश करती है। कौन? मोहम्मद। तो देहधारी हुआ तो पटका रख देते हैं घोड़े पर, क्योंकि मोहम्मद ने भी किसी पर सवारी की। और यहाँ क्या बात है, यहाँ कोई सवारी करने वाला देहधारी आत्मा नहीं है, लेकिन स्वयं निराकार बाबा है। निराकार बाबा की प्रवेशता है, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा अथवा विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा आ गया है। अलग अलग तरीके से क्यों बोला? स्वर्ग का मालिक बनाने वाला, विश्व का मालिक बनाने वाला, दो जगह बोलने की क्या जरूरत? विश्व का आ जाता है 500 करोड़ को, जिसमें विश्व धर्म हो, विश्व माना सारा, और स्वर्ग में 500 करोड़ नहीं होते। तो स्वर्ग का मालिक बनाने वाला भी है और विश्व का मालिक बनाने वाला भी है। विश्व का मालिक बनते हैं संगम निगम, ये संगम की स्वर्ग है, जिसका गायन है योग बल से विश्व की बात कही। बाबा है गीता का सच्चा सच्चा भगवान, वो तो सब झूठ हो जाते हैं। कौन? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि जो धर्म पिताएं हैं वो झूठे हो जाते हैं। सच्चा सच्चा बाबा हमारा है, जो इस झूठ खंड को सच खंड बनाते वो झूठे क्यों हो जाते? वो धर्म पिताएं, क्योंकि वो जो सच्ची दुनिया होती है उनके आने के बाद और ही झूठी दुनिया बन जाती है। तो हमारा बाबा सच्चा है जो आकर के सच खंड बनाते हैं, झूठ खंड को पलटाते हैं, क्योंकि जो जैसा होगा वो वैसे ही रचना रचेगा। झूठा होगा तो झूठे की रचना भी झूठी होगी, और सच्चा होगा तो सच्चे की रचना भी सच्ची होगी। आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है, यह है आत्माओं का लव बाप के साथ। ये खुशी किनको चलती है? उनको चलती है जो बहुत काल से अलग हुए इससे कौन से बाप से बाप भी तो दो हैं देह के तो तीन तोल बाप से ज्योति बिंदु से जो पहले पहले अलग हुए बहुत काल से अलग हुए बाबा खुद भी कहते हैं हमने तुमको सुख के संबंध में भेजा था अब दुख के बंधन में हो तुम अभी समझते हो तभी तो 84 जन्म नहीं लेते हैं कोई 83 जन्म भी लेते हैं 82 भी लेते हैं तो सबसे पुराने बिछड़े हुए कौन से हुए 84 जन्म लेने वाले वो बहुत काल से अलग हुए उस निराकार बाप से बाबा खुद भी कहते हैं 84 लाख का चक्र तो कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकता बाबा ने 84 का चक्र बिल्कुल ठीक बताया 84 जन्मों का चक्र तो बताया जा सकता है लेकिन 84 लाख जन्मों का चक्र तो कोई बता ही नहीं सकेगा बाबा के बच्चे 84 जन्म लेते रहते कितने बच्चे हुए जो 84 जन्म लेने वाले हैं वो तो हैं बाबा के बच्चे 9 लाख सितारे जो आसमान में गाए जाते हैं उनकी तेल वाले और बाकी सब उनके मुकाबले बाकी सब हैं नीचे तेल वाले निराकार से प्यार करने वाले निराकारी तेज वाले परमात्मा को पहचानने वाले उससे प्यार करने वाले नहीं है बल्कि देहधारी गुरुओं में फंसने वाले हैं अभी तुम जानते हो हम आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुनते हैं बाबा इसे मुख द्वारा सुना रहे हैं खुद कहते हैं मुझे इन आर्गन्स का आधार लेना पड़ता है उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य चाहिए ना प्रजापिता ब्रह्मा फरिश्ता नहीं कौन चाहिए मनुष्य सूक्ष्म वतन में थोड़े ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे मतलब सिर्फ ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी हो सकता है लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा ये भी जोड़ी हो गई जगत पिता और जगत माता की आदि ब्रह्मा आदि माता और आदि पिता की ये सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे स्थूल वतन में आकर कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुमको एडाप्ट करता हूं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में आकर नहीं कहते हैं है? जो समझे बैठे हैं कि सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा गुलजार दादी में आता है और उसमें सुप्रीम सोल से वह निराकार आता है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में तो इस तरह गुलजार दादी में आकर के ब्राह्मणों की एडॉप्शन चलती है ये बात रंग है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में तो शिव बाबा आते ही नहीं क्योंकि सूक्ष्म वतनवासी तो पवित्र होता है कैसा होता है पक्ष की दुनिया वालों से उसका कोई रिश्ता ही नहीं संबंध ही नहीं कनेक्शन ही नहीं तुम जानते हो अहम आत्मा ईश्वर की गोद में जाते हैं शरीर बिगड़ तो गोद हो नहीं सकती और देहधारी धर्मगुरु का ऐसे ही गपोड़ा मार देते हैं कि शिव बाबा ज्योति बिंदु की गोद में बैठो तो बिंदु की गोद कैसी हुई बिंदु को तो न कंधा होता न गोद होती तो आत्मा साकार शरीर धारण करके उस निराकारी स्टेज में रहने वाले साकारी बाप की गोद में जाती आत्मा कहती है मैं शरीर द्वारा इनकी बनती हूँ, बनने वाला भी शरीरधारी और जिसका बनता है जीवात्मा वो भी शरीरधारी। आत्मा का ज्ञान न होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है, वो समझते हैं कि बिंदी आत्मा बिंदी की गोद में बैठ जाए, ऐसे तो होता नहीं। मैं आत्मा शरीर सहित इनकी बनती हूँ, ये शरीर इसने लोन लिया है, ये इनकी और इसने किसने कहा इनकी और इसने ये शब्द किसके लिए यूज हुए? मैं आत्मा शरीर सहित इनकी बनती हूँ, किनकी है? इनकी जब कहते हैं तो इशारा किस तरफ होता है बाबा का? दो हो गए। यह शरीर इसने लोन लिया है, यह शरीर इसने लोन लिया है, मैं आत्मा शरीर सहित इनकी बनती हूँ। कहने वाला कौन? आत्मा। किसके लिए वह कह रही है? परमात्मा बाप के लिए कि मैं इनकी बनती हूँ, ये शरीर इसने लोन लिया है। किसने? परमपिता परमात्मा ने। यह जन्म इनका नहीं है, यानी ये शरीर इनका नहीं है। ये कौन कहती है? आत्मा। आत्मा ने इसमें प्रवेश किया, माना सुप्रीम सोल। तुम्हारे तन में भी आत्मा प्रवेश हुई है ना? अब ये कौन बोला? शिव बाबा बोले। अब कौन बोला? तुम्हारे तन में भी, तुम्हारे कितने कहा? अभी तक तो ये आत्मा की अंदर अंदर की विचार संकल्प सरणी बताई कि ऐसे ऐसे आत्मा विचार करती है। अब शिव बाबा ने बोला तुम्हारे तन में भी आत्मा प्रवेश हुई ना? माने किसके तन में? हाँ, कोई भी मनुष्य आत्मा जो बाबा से पढ़ाई पढ़ रही है, जिसके लिए बोला तुम्हारे तुम्हारे तन में भी आत्मा प्रवेश हुई ना? ये बाबा भी कहते हैं मैं इनमें हूँ, तब बच्चा बन जाता हूँ, मम्मा भी बन जाता हूँ, मैं इनमें हूँ। इनमें माने किन में? सिर्फ ब्रह्म। इनमें माना बहुवचन है कि एक वचन? बहुवचन है ना। माना इनमें माना प्रजापिता प्लस ब्रह्म, जगत पिता और जगत माता। ये बाबा भी कहते हैं मैं इनमें हूँ, कब बच्चा बन जाता हूँ, इनमें से मेरे तन में आकर क्या बन जाता? बच्चा बन जाता हूँ और मम्मा भी बन जाता हूँ। मम्मा किस में आकर बन जाता हूँ? हाँ, फीमेल तन में आकर ब्रह्मा बन जाता हूँ। तो जादूगर हूँ ना। कहते भी है तुमेव माता चपिता तुमेव, तुमेव बंधु चा तुमेव। कई फिर इस खेल पाल को जादूगरी समझते हैं। ये तो जादूगरी है, जादू फैलाया हुआ है, ऐसा जादू बनाया जादूगर है। कि कहीं होता है कि अभी अभी बच्चा बने और अभी अभी बाप बन जाए? हैं? हैं? घड़ी घड़ी में संबंध ऐसे कहीं चेंज हो जाते हैं? तो कहीं फिर इस खेल पाल को जादूगरी समझ लेते हैं। दुनिया में झूठी रिद्धि सिद्धि का काम तो बहुत चलता है, प्रश्न भी बन जाते हैं। मन का भाव होगा कृष्ण में तो उनको झट कृष्ण दिखाई पड़ेगा, उनको मान लेंगे और उनके फॉलोअर्स बन जाएंगे। इनके जो कृष्ण बन जाते हैं, यहाँ तो सारी ज्ञान की बात है। सिर्फ कोई कह रहे कि हम तो बन गए, हम कृष्ण की आत्मा है, हम कृष्ण बन गए, तो इससे सिर्फ कह देने से हम मानने वाले नहीं। पहले ये पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, और बाबा खुद कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। ऐसी नॉलेज कोई दे नहीं सकता। भक्ति मार्ग का जब अंत आता है तब बाप को आना पड़ता है। कब आते हैं? भक्ति मार्ग के अंत में, यानी अंत कब होता है? जब अति हो जाती है तो अंत होता है। तो अंधश्रद्धा की जब अति हो जाती है, ढेर के ढेर भगवान निकल पड़ते हैं, और सब भगवान कोई अपने को राम, कोई अपने को कृष्ण की सोल बताते हैं। कोई कृष्ण बन करके बैठ जाते हैं, कोई राम बन करके बैठ जाते हैं, और मानने वाले फॉलोअर्स उनको मानने लग पड़ते अंधश्रद्धा युक्त होकर के। तो जब ऐसी भक्ति की अति हो जाती है तब मैं आता हूँ। क्या मेरे को आना पड़ता है मन? ये भी मजबूरी हो गई। क्यों, किस बात की मजबूरी? ये सारे भटक जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे भी भटक जाएं और दूसरों के फॉलोअर बन जाएं। क्योंकि बाप के बच्चे कितने हैं? 500 करोड़ हैं क्या? कितने? पूरे 84 जन्म लेने वाले बाप के बच्चे हैं। तो वो बच्चे ऐसे हैं जो आज से लेकर के अंत तक किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं नहीं। तो बाबा को भी डर हो जाता है कहीं मेरे बच्चे भटक न जाए, इसलिए मुझे आना पड़ता है। जब ऐसी भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा की अति देखते हैं तो मुझे आना पड़ता है। है?
बल भक्तों को, बहुतों को शिवलिंग का अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जैसी जिसकी भावना होती है वो मैं उसकी पूरी करता हूँ, परंतु मेरे से कोई मिलता नहीं है। इस बात से न भक्ति से न साक्षात्कार से। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा को साक्षात्कार हो गए तो साक्षात्कार होने मात्र से उन्हें भगवान से मेल हो गया, नहीं। साक्षात्कारों के रहस्य को भी समझना पड़े। मेरे को तो पहचानते ही नहीं है, तो जब पहचानते ही नहीं है तो मिलेंगे कैसे? साक्षात्कार से कोई मिलना नहीं होता है। अभी तो तुम समझते हो बाबा भी बिंदी है और हम भी बिंदी हैं। हमारी आत्मा में भी नॉलेज है, तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज है। ये किसको मालूम नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों के संस्कारों का पार्ट भरा हुआ है। बाबा कहते हैं मैं परमधाम में रहने वाला हूँ। दूसरा पेज, जब तुम बाबा के सामने आकर बैठ जाते हो
तो बच्चों के रोमांच खड़े हो जाते। ओहो, शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है वो इतने बैठ हमको पढ़ाते हैं। ये रोमांच में किसको खड़े होंगे? तुम बच्चों के जो बात आपको सही होते हैं मना बनाते हैं कितने बच्चे बताओ। हाँ बच्चों का बच्चों के बताते हैं लेते हैं ज्ञान भी लेते हैं और फिर बाद में ग्लानी करते हैं। तो बच्चों को गुणवान बनना पड़े उन ग्लानी करने वालों बच्चों को भी गुणवान बनना पड़े। कैसा गुणवान? जो 9 लाख की लिस्ट में आकर के 100% देवता बने, 100% स्वर्ग में जा सके। क्योंकि एक बार जो सन्मुख आकर बाप के बच्चे बने तो स्वर्ग में तो जरूर आ जाएंगे, लेकिन पद कम हो जाएगा। बाकी गुणवान तो बनना पड़े। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, ऐसा गुणवान बनना पड़े। बाप के बने, माता को पहचाना और फिर बाद में ग्लानी करें माता जी। तो ऐसे बच्चों के लिए बताया कि उनको गुणवान बनना पड़े, क्योंकि वो सन्मुख आ चुके हैं, एक बार स्वीकार कर चुके हैं, तो उनके 84 जन्म तो होंगे, लेकिन शर्त क्या है? पद कम हो जाएगा और उनको गुणवान जरूर बनना पड़े, यानी मजबूरी है, बनना ही पड़ेगा। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, देह अहंकार भी नहीं चाहिए। इस समय तुम यहाँ बैठते हो, जानते हो हम यहाँ हैं, फिर मुरझाए साथ क्यों आनी चाहिए? बाबा के सन्मुख बैठते तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए या मुरझाए सानी चाहिए? मुरझाए साने का कारण क्या? कि या तो माँ को या बाप को अवगुण की दृष्टि से देखते हैं तो मुरझाएस आ जाती, देह अहंकार के कारण मुरझाएस आती। पूछा कि जब हम यहाँ हैं, ये जानते हो हम यहाँ हैं माने कहाँ हैं? माता पिता के सन्मुख हैं, तो मुरझाएस क्यों आनी चाहिए? उसका जवाब क्या होगा? क्या जवाब हुआ? क्यों मुरझाएस आई? क्योंकि पिता को तो समझ भी लेते हैं, क्योंकि सारी दुनिया गॉडफादर को मानती ही है, लेकिन दूसरे धर्म की आत्माएं या दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं पिता को तो मानती हैं, लेकिन माता को नहीं मानती हैं।
तो डिजाइन करती होंगी।
हाँ, बाहर से भले लिख करके दे देना अलग बात है, लेकिन अंदर से स्वीकार कर लें दिल से, तो वो स्वीकार नहीं करती। तो उनके लिए कहा कि ये अवगुण की दृष्टि खलास होनी पड़े, गुणवान बनना पड़े। माता पिता में अवगुण क्यों देखना? बच्चे अगर माता पिता में अवगुण देखेंगे तो खुद कैसे बनेंगे? बाबा कहने से तो एकदम खुशी आनी चाहिए, परंतु यह परिपक्व अवस्था अंत में होगी। गाया भी हुआ आप इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। किससे पूछो? गोप गोपियों की। तो गोप गोपियां कह देना तो सहज है कि हम भी गोप गोपियां हैं परमात्मा की, क्योंकि हम गुप्त पार्ट बजाए रहे। लेकिन गुप्त पार्ट कौन सा? गुप्त पुरुषार्थी तो सभी है। गोप गोपियों का अर्थ है जिन्होंने गुप्त संबंध जोड़ा है प्रैक्टिकल में परमात्मा बाप के साथ। जैसे संसार में प्रैक्टिकल संबंध जोड़े जाते हैं, ठीक वैसे ही यहां भी जिन्होंने प्रैक्टिकल संबंध जोड़ा तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से और संबंध से, तो उनको कहा जाता है गोप। पुरुष है तो गोप और स्त्री है तो गोपी। तो इन गोप गोपियों से अंत समय का ये गायन क्यों है पूछने का कि अतीन्द्रिय सुख पूछो तो गोप गोपियों से पूछो। शुरुआत में या मध्य में ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा जा सकता? हाँ, क्योंकि संबंध जोड़ते भी हैं, लेकिन जोड़ करके अनिश्चय पैदा होता है तो टूट भी जाता है, घड़ी घड़ी जुटता है, घड़ी घड़ी टूटता है, तो कॉन्स्टेंट नहीं हो पाता। लेकिन जब हुजूम ज्यादा हो जाता है तो अंत समय में, माना कब, जब परिपक्व स्टेज बनती है हर एक गोप गोपी की, तो उस समय उनको अतीन्द्रिय सुख की वासना आरंभ होती है। अतीन्द्रिय सुख ऐसे नहीं कि एक बार शुरू हो गया तो फिर खलास हो जाएगा। अतीन्द्रिय सुख कोई विनाशी सुख नहीं है कि घड़ी घड़ी अतीन्द्रिय सुख बासे और घड़ी घड़ी लोप हो जाए। ये तो एक बार आरंभ होगा तो बना ही रहेगा जब तक दुनिया का विनाश न हो। तो ये अंत में होगा। कोई ऐसे कह नहीं सकता कि हम 75% अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, बाकी 25% इंद्रियों के सुख में रहते हैं। जो इंद्रियों के सुख में रहने वाला होगा 1% या 25%, तो मम्मा बाबा को भी किस दृष्टि से देखेगा? जैसी दृष्टि वैसी शक्ति, उसे शक्ति भी वैसी ही दिखाई पड़ेगी। ये मम्मा बाबा भी वही इंद्रियों का सुख भोगते होंगे। ये कोई हमसे जाति विशेष पुरुषार्थी तो नहीं। और अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोला हुआ क्या, क्या बोला हुआ? बेहद के महिमा सारी एक पूज्य की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो सबको पूजते रहते, भ्रष्टाचारी की भी महिमा करते रहते, परंतु ये भी तुम समझते हो जब श्रेष्ठाचारी को पहचाना है अपने अपने समय पर हर एक की महिमा होती है। मंदिरों में जाकर के पूजा आदि करते हैं परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। अभी तुम समझाते हो तो सुन करके खुश होते हैं, खुश होते हैं तब तो सेंटर्स खोलते हैं, समझते हैं कि हम इस नाले से हम तो देवता बनेंगे। बाप ने गरीबों को आकर के साहूकार बनाया है, बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे से तुम औरों को जाकर के समझाओ, उन्हों का बाकी खोले। वल्ल की इसकी जागृति अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, वो समझने से तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की स्थिति जागृति तो जरूर वर्ल्ड का रचयिता बीज रूप बाप ही सुनाएंगे, वो ही नॉलेज फुल है, वो है निराकार शिव। देहधारी को रचयिता नहीं कहेंगे, निराकारी सभी आत्माओं का पिता है, वो बैठे आत्माओं को समझाते हैं। 17 नंबर के रजिस्टर में 13587 का प्रातः क्लास, दूसरे पेज का मध्याह्न। तो ऐसे कोई नहीं कह सकता कि हम 25% अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं और 75% अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं और 25% इंद्रियों के सुख में रहते हैं। नहीं, जिसका अतीन्द्रिय सुख का वर्षा शुरू हो जाएगा तो वो कभी भी इंद्रियों के सुख को लेगा ही नहीं। इंद्रियों के सुख का महत्व उसके लिए खड़ा। इस समय सिर पर पापों का बोझ बहुत है, तो क्या करें? पापों का बोझ खलास करने के लिए क्या करें? हैं? गीत कौन सा बना हुआ है?
ले लो
दुआएं माँ बाप की, तब उतरेगी गठरी पाप की। ये पाप की गठरी चढ़ते 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 इतना पाप का बोझ क्यों चढ़ा? क्योंकि माता पिता की ग्लानी कर दी। 5000 वर्ष के ड्रामा में भी, जो 2500 वर्ष का भक्ति मार्ग है उसमें भी ग्लानी होती है। ग्लानी होते होते परमात्मा को ही सर्व जाति कह देते। और शूटिंग पीरियड में भी ग्लानी करते। गुरु कृपा से व गंगा स्नान करने से पाप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बाप अंत में ही आकर के नालिश देते, दिखाते हैं कन्याओं द्वारा बाण मरवाए इनको, बड़े बड़े गुरुओं को, धर्म गुरुओं को, सन्यासियों को, जो परमात्मा की ग्लानी के निमित्त बनते हैं, शास्त्रों को महत्व देते हैं, शास्त्रों को जानते हैं लेकिन परमात्मा बाप को नहीं जानते। उनको कन्याओं द्वारा ज्ञान के बाण मरवाए और वो मर गए। फिर मरने के समय गंगा जल पिलाया क्या? गंगा जल कब पिलाया? इनके मरने के बाद। भीष्म पितामह जब उनके मरने का समय आया तो कन्या के द्वारा बाण मरवाए और उनको गंगा जल पिलाया। तुम यहाँ जब बेहोश हो जाते हो तो तुमको बाबा की याद दिलाई जाती है, उनको गंगा जल पिलाया जाता और तुमको बाबा की याद दिलाई जाती है। क्या याद दिलाई जाती है? बेहोश क्यों हो जाते हैं? माया रावण के चंबे में आ जाते हैं तो बेहोश हो जाते। कोई किसी के चंबे में कब आता है? हैं? आज की दुनिया में भी कोई कन्याएं माताएं अगर अलबेली होकर के रहें तो चंबे में आएंगी? और अलर्ट होकर के रहें, अपनी सुरक्षा अपने आप करें तो चंबे में आने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो बाबा भी याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? माँ में कम याद करो, कोई दूजन याद न करो। तो माँ में कम ये बच्चों को टेव पड़ जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई याद करावे तब याद आवे, नाक पकड़ के बैठाया जाए संगठित क्लास में, उस समय तो याद आ रही है, बाकी सारा दिन याद आती ही नहीं। तो थोड़े कहेंगे कि अभ्यास पक्का हो गया है याद का। याद ऐसी हो जो चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते भी याद आती रहे। जैसे दुनिया में भी किसी की किसी से दिल लग जाती है तो हर समय उसकी याद, कारखाने में काम करते भी महबूबा याद आती रहेगी। तो ऐसी पक्की याद छप जानी चाहिए, विचारी याद ना हो। माँ में कम इतनी प्रैक्टिस पक्की हो कि मरने के समय माने शरीर छोड़ने के समय अपने आप याद आवे, कोई शरीर छोड़ने का टाइम फिक्स होगा क्या कि जिस समय हाथ पांव बांध करके एक क्लास में बैठेंगे उसी समय शरीर छूटेगा? ऐसा तो कुछ निश्चित है नहीं। विनाश का समय आने वाला है, भगदड़ की जिंदगी होगी, तो उस समय जिनका अभ्यास पक्का होगा एक से प्रीति जोड़ने का, एक को याद करने का, वो तो उस अवस्था में अपना शरीर छोड़ेंगे और फिर 9 लाख की स्टेज में 9 लाख सितारों की संख्या में आ जाएंगे। परमात्मा बाप से डायरेक्ट वर्षा लेने वाले, सन्मुख वर्षा लेने वाले बन जाएंगे। और नहीं तो साबित हो जाएगा कि उन्होंने मां में एकम याद नहीं किया, एक से प्रीति नहीं जोड़ी, जरूर कोई न कोई दूजन भी याद आता रहा। तो शरीर छोड़ने के समय आते ही याद आ गए, बिगड़े किसकी मदद के? अगर किसी की मदद से याद आती है तो मां एकम ये याद पक्की कही जाए, आप बेचारी याद कही जाए, क्योंकि जो याद दिलाने का निमित्त बनेगा वो भी याद आ जाएगा। किसको बात किसकी अभी हो रही थी? भीष्म पितामह की, सन्यासी की। उनको अपने आप याद आया, उनको स्मृति किसके द्वारा दिलवाई गई? कब मरे? वो किसी के द्वारा मरे नहीं, वो जीते जी कब मरे? जब कन्याओं के द्वारा बाण मरवाए गए। तो आज भी सन्यासी एक तरफ निराकार को भी मानेंगे, याद करेंगे, और दूसरी तरफ देवियों की भी पूजा करेंगे, देवियों की भी मान्यता देते हैं, फिर निराकार को भी याद करते हैं। तो उनकी याद विचारी हुई या अभिविचारी हुई? तो शरीर छोड़ने के समय आते ही याद आ गए, बिगड़ किसकी मदद की? अगर कन्या ने बाण मारे और फिर उनको बाण लगे और वो मरे तो विचारी याद में नंबर लग जाएगा। तो ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किसी की दरकार ना हो, क्योंकि बाप को ही याद करना है। वो लोग तो मंत्र देते हैं, वो तो कॉमन बात हो गई, उस समय बहुत मारा मारी याद होती है। तुम भिन्न स्थानों पर रहते हो, किस समय? उस समय ऐसे नहीं कोई कहेंगे कि शिव शिव कहो, इस समय की बात याद दिलाई। जब अंत समय होगा सारी दुनिया का, उस समय चारों तरफ दुनिया में क्या होगा? मारा मारी, लड़ाई झगड़ा का माहौल होगा। उस समय कोई किसी को याद कराने वाला नहीं होगा, क्योंकि उस समय तुम भिन्न भिन्न स्थानों पर रहते हो। उस समय पूरी याद चाहिए, लव चाहिए, तभी नंबर वन पद प्राप्त कर सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ, कल पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाया था। इस समय कांटों से फूल बनने की ये सीजन है, इस समय सारी दुनिया कांटों का जंगल है। यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी विष्णु चिंतन है। क्या था? कहाँ पैदा होते हैं? हैं? इस दुनिया में भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी बिच्छू चिंतन, और बाप के पास जो बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें भी कोई कोई बिच्छू चिंतन पैदा होते हैं। अब ऐसे बच्चों की सीजन पूरी होने वाली है। अगर ये सीजन ऐसे ही चलती रहे तो कतयुग में भी क्या पैदा होते रहेंगे? बिच्छू चिंतन ही पैदा होते रहेंगे, फिर उसे स्वर्ग कहेंगे नहीं? ऐसे बिच्छू चिंतन, बिच्छू का मिसाल क्यों दिया? बिच्छू में जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो बच्चे माँ बाप को पहले ही मार लेते हैं। बिच्छू का पेट फाड़ करके बच्चे निकलते हैं, इतनी तकलीफ देते हैं माँ को یہ مثال کس کے لیے ہے؟ جو بات ماں باپ کو پسند نہیں ہے وہ بچے کیوں کریں؟ بار بار اگر وہی بات کریں گے تو باپ تو چلو پاور فل ہوتا ہے، ماں تو بچوں کو پیار سے ہی چلاتی، زیادہ سے زیادہ مکھ سے کہے گی. باقی اگر بچے نہیں مانیں گے تو ماں کو اندر سے دکھ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہارٹ فیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ایسے ایسے ذمہ داری بچے ہوتے ہیں، ماں کا ہی ہارٹ فیل کر دیتے، بزرگ کی پیٹ پھاڑ دیتے. اب یہاں تو ایسے ماں باپ نہیں ہیں جن کا بزرگ کی پیٹ ہٹے. باقی حساب کتاب تو بن جاتا ہے، کس بات کا؟ دکھ دینے لینے کا حساب کتاب تو ضرور بنتا ہے. سچ میں تو یوگ بل سے بچے پیدا ہوں گے، پھول پیدا ہوں گے، پھول دکھ دینے والی چیز وہاں کوئی ہوتی نہیں ہے. وہاں تو نام ہی ہے سورگ، پرنتو وہاں کون نواس کرتے ہیں یہ بھارتواسی جانتے نہیں ہیں. شاستروں میں تو بہت ایسی باتیں لکھ دی ہیں کہ وہاں بھی ہرنا کشپ آدی تھے. کہاں؟ سترگ میں بھی ہرنا کشپ آدی تھے. تو شاستروں میں کیا جھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں؟ بابا تو کہتے شاستروں کی باتوں کو اس سمے ٹیلی کر سکتے ہو. ہاں ضرور، سنگم یوگ ستی کی شوٹنگ میں ایسی آتمائیں ہوتی ہیں جو پرہلاد جیسے بچوں کو دکھ دیتی ہیں. پر مانا بکت سروپ آلہد مانا خوش، جو وشیش خوش رہنے والے بچے ہیں، باپ سے سنمکھ ملن منانے کی خوشی میں وشیش خوش رہنے والے جو بچے ہیں ان کو دکھ دینے والے بھی ہوتے ہیں. تو ایسے دکھ دینے والے پرماتما باپ کے ان سچے بچوں کا تیز پینے والے وہ ہیں ہرنا کچھ. تو ایسے ہرنا کچھ کوئی ستیگ میں نہیں ہوتے، سارے بارہ سو بچے کے یوگ میں، وہاں تو دیوتا ہی ہوتے ہیں. لیکن شوٹنگ پیریڈ کی بات ہے کہ ستی بھی شوٹنگ کا جب پیریڈ ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، تو اس سمے آتمائیں ایسی آ کر کے پرماتما باپ کے بچے بنتی ہیں، بچو چندن جیسی. کیونکہ یہ تو گائن ہے، ملے نہ پھول تو کانٹوں سے دوستی کر لے. پرماتما باپ اس دنیا میں آتا ہے تو پھول ملتے ہی نہیں، پھول سارے راون کے پنجے میں پہنچ جاتے. تو باپ کو کانٹے ملتے ہیں تو کانٹوں کو ہی پھول بنانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. تو صرف ستی کی شوٹنگ کی بات نہیں ہے، ہر یوگی کی شوٹنگ میں ستو پردھان اوستھا نتی ہوئی ہے. مانا ہر یوگی کی شوٹنگ کے آدھ میں یہ پارٹ چلتا ہے کہ جو آتمائیں نکلتی ہیں اس پیریڈ میں، جیسے تریتا یوگی شوٹنگ شروع ہوئی تو اس میں بھی دوسرے دھرم کی کچھ نہ کچھ آتمائیں نکلتی ضرور ہے، جو باپ کو پرتکش کرنے کے نمت بنی. باپ کی پرتکشتا ورت میں سن 76 میں، لیکن انہوں میں موسٹلی ہرنا کچھ جیسا پارٹ بجانے والی، جو سنسار کو وشیش خوشی دینے کے نمت بنی ہوئی آتمائیں ہیں ان کو دکھ دینے کے نمت بن جاتی. تو ایسے ہر یوگ کی شوٹنگ میں یہی پارٹ چلتا ہے.
تین پانچ 87 کا کاسٹ لگ ریکارڈ چلا تمہیں پا کے ہم نے جہاں پا لیا،
تم کو اپنا شریر نہیں ہے، تم کا کوئی بھی دشمن نہیں بن سکتا. دوست اور دشمن کس کے بنتے ہیں؟ جن کو بےبان ہوگا، جن کو اپنا شریر ہوگا
उन्हीं के दो कर दुश्मन बनते हैं, जिसको अपना शरीर ही नहीं उसका दोस्त और दुश्मन बनने की बात ही नहीं। यहाँ दुश्मन बनते हैं तो एक दो को मार डालते, गांधी को मारा क्योंकि उनको तो शरीर था, बाप को तो अपना शरीर है नहीं, मारने चाहेंगे तो वह भी इसको जिसमें प्रवेश करता तुमको तो कोई मार नहीं सकता। मार नहीं सकते, काट नहीं सकते, गांधी का मिसाल लिया। गांधी को शरीर था, देहभान था, तो उनको गोली मार दी। जिसको देहभान नहीं होगा, देहभान जिसका खलास हो गया, पाप कर्मों का बोझा ही खलास हो गया, तो उससे कोई की दुश्मनी नहीं हो सकती। ऐसे ही ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आया तो कोई अगर मारना चाहेगा तो भी किसको मारेगा, इसको माना किसको, ब्रह्मा को, और मारा भी। कोई ने ज्ञान की गोली लगाई और उनका हार्ट फेल हो गया, तो इसको मारना चाहेंगे तो मारेंगे, इसको जिसमें प्रवेश करता हूँ तुमको तो कोई मार नहीं सकते, काट नहीं सकते। अब उनको जो भक्ति मार्ग में 10 दिखाए हैं, जरूर वो 10 पुरुषों की यादगार है। क्योंकि चित्र बनाए जाते हैं चरित्र के आधार पर। पांच पुरुष दाई ओर के, और जो वास्तव में स्त्री मुख होने चाहिए वो भी उन्होंने बाई ओर के वामांगी पांच पुरुष मुख दिखाई दिए भक्ति मार्ग में। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब शूटिंग होती है 5000 वर्ष के ड्रामा की, तो उसमें आधारभूत आत्माएं जो विदेशी धर्म पिताओं के आधार बनते हैं, अर्थात जिनमें विदेशी धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं, वह उन्होंने विदेशी अथवा स्वदेशी धर्मों के विपरीत धर्मों के आधार बन जाते हैं, माना उन धर्मों की माता बन जाते, जिनका वो विदेशी या स्वदेशी विपरीत धर्म वाले धर्म पिताएं आधार लेते हैं, तो वो हुए माता के रूप में। लेकिन संगम युग में जो पार्ट बजाते हैं, वो संगम युग में पार्ट बजाने वाले पुरुष चोले में होते हैं, इसलिए भक्ति मार्ग में उन्हों को भी पुरुष मुख दिखाया है। वास्तव में दिखाना चाहिए उनको स्त्री मुख, क्योंकि वो भल पुरुष चोले में है लेकिन काम तो आधार का करते हैं ना। उनको अपनी इतनी अकल नहीं है कि इस ज्ञान की गहराई को, एडवांस नॉलेज की गहराई को खुद समझ सकें। जो बीज रूप आत्माएं उनके द्वारा उनको नॉलेज मिलती है। तो बीज रूप आत्माएं वो तो पुरुष मुख हुए, इस तरह रावण के 10 सिर पुरुष मुख दिखाए जाते हैं भक्ति मार्ग में। वास्तव में बीज रूप बीज होता है बाप, पिता होता है निराकार बीज, और माता होती है साकार आधार। तो वास्तव में रावण का रूप दिखाना चाहिए 5 पुरुष मुख बीज रूपात्मा और 5 स्त्री मुख आधार मूर्तात्मा, लेकिन भक्ति मार्ग में उनको 10 पुरुष के रूप में दिखाई दिया। चित्रों में फिर नारायण को सांवरा और लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं। ये यादगार भी कहाँ की हुई है? कैसे संगम में नारायण काला होता है और लक्ष्मी गोरी होती है? लक्ष्मी पवित्र और नारायण अपवित्र, तो अब बताओ एक पवित्र और एक अपवित्र कैसे हो सकता है? तो ये चित्र झूठे हुए ना। कौन से चित्र? जो सटिंग में लक्ष्मी नारायण का चित्र है वहां तो झूठा हुआ ही, लेकिन संगमी भी पुरुषार्थ की यादगार होने के कारण वो झूठे नहीं है। अगर उनको अर्थ सहित समझा जाए, जैसे बाबा ने बताया तो रामायण भागवत आदि में जो भी बातें हैं वो सब संगमी की यादगार हैं, क्योंकि चित्र बनाए जाते हैं संगमी के चरित्र की यादगार। तो नारायण बनने वाला जो पुरुषार्थी है वो संगम युग में कौन से चोले में होता है? पुरुष चोले में होता है। और लक्ष्मी पाठधारी वो भी वो स्त्री चोले में होती। तो पुरुष जितने हैं वो सब दुर्योधन दुशासन बताए, और कन्या माताओं को दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में नहीं डाला, इतना तक बता दिया कि जब विनाश होगा तो आधे पापात्मा आधे पुण्यात्मा बचेंगे, माना आधे पुरुष और आधी स्त्रियां बचेंगे। तो बात समझाते हैं, राधे कृष्ण तो गोर दोनों गोरे थे, लेकिन कहां दोनों गोरे कौन से युग में थे? संगम युग में या सत्ययुग में? सत्ययुग में। ब्राह्मण ही इन्हें संभाल करते, काम करने वालों को ही ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये की संभाल करने के लिए कन्या माताओं को निमित्त क्यों बनाया? क्योंकि कन्या माताएं ही पहले ब्राह्मण से जीवन धारण कर लेती, और पुरुष यज्ञ की संभाल करने के काबिल नहीं बन पाते। तो यज्ञ अर्थात ज्ञान यज्ञ की संभाल करने में पवित्र बनना, नहीं तो ज्ञान यज्ञ की संभाल नहीं कर सकेंगे और ही नुकसान पहुंचाने वाली बनेंगे। बाकी कोई इस यज्ञ में जौ केला आदि नहीं इकट्ठे किए जाते हैं, जैसे और लोग करते हैं, आफत के समय यज्ञ रखते हैं। समझते हैं भगवान ने भी ऐसा यज्ञ रचा था, जिसमें जौ तिल आदि की आहुति दी थी। जौ का मतलब क्या हुआ? अन्य अनाजों के मुकाबले जौ में विशेषता क्या होती है? उसमें छिलका जास्ती होता है। तो ये है जीव देह अभिमान का छिलका, जो देह अभिमान का छिलका है वो यज्ञ में चाह करना है। और तिल तिल चक चक की आवाज करता है। तो जो ज्ञान यज्ञ में चलने वाली आत्माएं आपस में चकराती हैं और चकचकाहट की आवाज होती है, वो हुए तिल जिनको चाह करना है। तो कोई स्थूल जौ तिल आदि तो चाह करने वाला ये यज्ञ नहीं है। तो कोई स्थूल घृत को चाह करते हैं। यहाँ घृत कौन सा है? ज्ञान का घृत नहीं। हाँ, जो स्मृति है वो परमात्मा की याद में लगानी। बाप प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ये यज्ञ रचते। तुम सब ब्राह्मण हो, तुमको मिलता है दादे से वरदान। तुम कहते ही हो हम शिव बाबा के पास आए हैं, केयर ऑफ ब्रह्मा। ये पोस्ट आके समझो शिव बाबा की। क्या कौन हुई पोस्ट आके? ब्रह्मा। चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। माना ब्रह्मा के बगैर शिव बाबा के पास पहुंचेगी नहीं। और शिव बाबा तुमको जवाब भी देंगे तो भी किसके थ्रू देंगे? ब्रह्मा के थ्रू। तो शिव बाबा का ब्रह्मा जैसे हो गया राइट हैंड। कोई कहते हैं बाबा अपने हाथ से चिट्ठी नहीं लिखते। अरे बाबा तो हैंड के द्वारा ही चिट्ठी लिखेंगे। तो शिव बाबा का हैंड कौन हुआ? ब्रह्म। तो बाबा का निवास इसमें है क्या? किसने? ब्रह्मा में। इसको दिले इसके दिलो दिमाग में घर करके बैठता है। ये सब ब्राह्मण पावन बनने के लिए ज्ञान योग सीख रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पति तो नहीं हैं, तो तुमने भी तुम्हारे लिए महल बनाते हैं। यहाँ भी तुमको नए महल में रखता हूँ। मैं तो पुराने में ही रहता हूँ। तो ये वंडरफुल बाबा है। तुमको नए महलों में रखता है और खुद पुराने में ही रहता है। ये बाप भी है तो तुम बच्चों का मेहमान भी है। कहा भी है संगम युग में बाप बच्चों का मेहमान बन करके आए। बॉम्बे में जाऊं तो मेहमान कहेंगे ना। जब तू बॉम्बे में जाऊं तो मेहमान क्यों है? वाह, जब नाम ही है बम बम तो बम बम की नगरी तो बॉम्बे होगी ना। तो अपनी नगरी में कोई मेहमान होता है क्या है? लेकिन बोला है संगम युग में बाप विदेशी बन करके आए। विदेशी है नहीं लेकिन बच्चों के सामने विदेशी बन करके आए हैं। क्योंकि अगर विदेशी बन करके ना आते तो बच्चों से मिल भी ना पाते। संपूर्ण स्वदेशी बन जाए तब तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनना पड़े। और मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए बाप तो फिर बच्चों से मिलन मेला मनाए नहीं सकते। तो यहाँ तो बहुत बड़ा ये बाप सारी दुनिया का मेहमान है। तुमको आने और जाने में देर नहीं लगती है और मेहमान भी वंडरफुल है। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए तो मेहमान हुआ ना। आते हैं तुमको गुलगुल बनाए वर्षा देने के लिए।